सेना का भेद लेने आए लंका के दोनों गुप्तचर वानरों के वेश में थे, पर लंकेश भ्राता विभीषण को उनका छल देखकर उन दोनों को पहचानने में देर नहीं लगी। वानर राज सुग्रीव उन्हें उनकी भूल का दंड देने के लिए श्री राम के सामने लाए, किंतु श्री राम ने उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें वापस लंका लौट जाने की अनुमति दी। जबकि पवन पुत्र हनुमान ने श्री राम का आदेश पाकर कैलाश से लाए शिवलिंग की स्थापना की और प्रभु श्री राम का आशीर्वाद पाया।
भगवान शिव का पूजन तो संपन्न हो चुका है भैया, अब यदि आप आदेश दें तो हम समुद्र पार कर लंका पर चढ़ाई करें।
अवश्य लक्ष्मण, आज सूर्यदेव मध्य आकाश में है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र भी है, अति शुभ नक्षत्र है, इसीलिए हमें आज ही लंका के लिए प्रस्थान करना चाहिए।
तो मैं पूरी सेना को प्रस्थान का आदेश देता हूं प्रभु।
किंतु वानर राज सुग्रीव, सभी सैनिकों को उचित निर्देश देने के बाद ही आगे बढ़ने को कहें।
जैसे आज्ञा प्रभु। समस्त सैनिकों, प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम आज ही सेतु मार्ग से लंका के लिए बढ़ेंगे। आप सभी अपने सेनापति नल और नील के मार्गदर्शन में समुद्र पार करेंगे। सेनापति नल और नील सामने आने वाले दुर्गम मार्गों को सुगम बनाते चलेंगे, पर स्मरण रहे कि शत्रु की सेना हम पर चोरी छुपे घात लगाकर आक्रमण कर सकती है, इसलिए हर पल चौकन्ने रहें।
वानर राज सुग्रीव की। सेनापति नल नील की। प्रभु श्री राम की। पवन पुत्र हनुमान की।
प्रभु, पूरी सेना सेतु से पार उतरने की तैयारी में है। मेरा निवेदन है कि आप दोनों भ्राता मेरे कंधे पर बैठकर ही सेतु पार करें।
तुम्हें इतना कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है पवन कुमार। जैसी पूरी सेना समुद्र पार करेगी, हम भी उसी तरह पार करेंगे।
मैं जानता हूं भैया लक्ष्मण, आप दोनों सेना के साथ ही जाना चाहेंगे, किंतु ऐसे मुझे बहुत कष्ट होगा।
भला ऐसा क्यों?
प्रभु के पास जितनी देर रहें उतना ही सुखकर है सुमित्रानंदन।
अच्छा, और मेरी इच्छा का क्या होगा? तुम्हारे कंधे पर बैठूंगा तो भैया के साथ चलने का सुख तो छीन जाएगा ना मुझसे। तुम्हारी पवन की गति में हम दोनों भाई ना तो आपस में ठीक से बात कर पाते हैं और ना ही मुझे सेवा का अवसर मिलता है। मुझे भी तो भैया राम के पास रहने और इनकी सेवा का अवसर चाहिए पवन कुमार।
आप तो हर पल प्रभु के साथ हैं लक्ष्मण, पर
ये कैसा विवाद है? मैं तो हर क्षण तुम दोनों के हृदय में रहता हूँ, फिर ऐसे झगड़ने की क्या आवश्यकता है?
क्षमा करें प्रभु, पर आपकी जितनी सेवा करूं मुझे कम ही लगता है,
इसलिए मेरे सुख के बारे में भूल जाते हो।
परंतु मुझे तुम दोनों के सुख का स्मरण रहता है।
प्रभु श्री राम की जय। प्रभु श्री राम की जय।
शुक और सारण, सेना प्रस्थान कर चुकी है, आप सभी जल्दी से जल्दी सेना के साथ हो ले।
ठहरो सारण, क्या हुआ? हमारा लंकेश के पास चलना ठीक नहीं है। यदि उनको ये पता चल गया कि हम पकड़े गए थे तो वो उसी क्षण हमें मार डालेंगे।
हाँ, ये बात तो है। यदि वो ये जानेंगे कि श्रीराम ने हमें क्षमा किया है तो तो वो हमें अवश्य दंड देंगे।
तो क्या करें?
यदि हमें मरना ही है तो श्रीराम की सेवा करते क्यों ना मरे? वो साक्षात ईश्वर है, उनकी ही कृपा से हम दोनों जीवित है। वरना हनुमान की गदा से कौन बचाता हमें?
तो सोचना क्या है, चलो श्री राम की ही सेवा में चलें।
अरे भागो, महामंत्री प्रात आ रहे हैं। क्या, छिप जा।
रुको, अब तो जान गई।
क्यों भाग रहे हो? तुम दोनों तो राम की सेना का रहस्य जानने के लिए गए थे।
हाँ, पर ये पकड़ा गया।
झूठ मत बोल, तुम पकड़े गए।
मैं नहीं, तुम पकड़े गए।
पकड़े गए और वानरों ने तुम्हें खूब पीटा। अब तुम दोनों को जो भी कहना है लंकेश के सामने कहना, चलो।
असफल होकर दशानन रावण के सामने जाने की कल्पना से ही सुख और सारण के प्राण सूख गए। वो दोनों अपनी पूर्व योजना के अनुसार भागकर श्री राम की शरण में जाना चाहते थे, किंतु उन्हें ऐसा अवसर नहीं मिल सका। महामंत्री प्रहस्त ने उन दोनों को रावण के सामने उपस्थित कर सारा हाल कह सुनाया।
लंकेश, रावण की काल जय, लंकापति की जय।
महाराज लंकेश, ये हैं हमारे गुप्तचर शुक और सारण, राम के वानर सैनिकों के बंधन से छूट के भागे। इनका कहना है कि
हमें सारी बातें विस्तार से जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बताओ कि हमने जिस कार्य के लिए भेजा था उसका क्या हुआ? कितने वीर सैनिक हैं राम की सेना में? उसकी शक्ति क्या है? रणनीति क्या है?
क्षमा करें महाराज, राम की सेना भयानक योद्धाओं और महारथियों से भरी पड़ी है। वानर सेना का सेनापति महाबली नील एक महान योद्धा है। उसका सहायक बाली पुत्र अंगद कई महारथियों को एक साथ परास्त कर सकता है।
और महाराज, राम ने यहाँ से गए आपके भ्राता महाराज विभीषण को अपना मुख्य सलाहकार बनाया है।
अब तो राम की पूरी सेना हमारी लंका के लिए प्रस्थान भी कर चुकी है महाराज लंकेश।
कायरों, शत्रु सेना की महानता का गुणगान करते हुए लज्जा नहीं आती तुम्हें? एक राम क्या, सैकड़ों राम भी त्रिलोक जय लंकेश रावण का कोई अहित नहीं कर सकते। महामंत्री प्रहस्त, तुम अभी इसी समय सभा बुलाओ, हम अपनी युद्ध नीति पर विचार करना चाहते हैं।
रावण का आदेश पाते ही तत्काल सभा बुलाई गई। पूरी लंका में युद्ध के नक्कारे बज उठे। लंका की विशाल सेना सावधान हो गई। लंकेश रावण के नाना माल्यवान को जैसे ही युद्ध की सूचना मिली, वो भागा भागा सभा भवन में पहुंचा।
मैंने इस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं लंकेश। मैंने देवासुर संग्राम में देवताओं की शक्ति भी देखी है और दानवों की भी। पर दशानन, शायद तुम ये नहीं जानते कि इस समय तुम जिस राम के सामने युद्ध के डंके पीट रहे हो, उसके साथ सारे देवताओं की शक्ति है।
आप ये भूल रहे हैं नाना कि आप जिसे परामर्श दे रहे हैं वो देवताओं को एक नहीं बार बार परास्त कर चुका है, धूल चटा चुका है उन्हें।
जानता हूं लंकेश, अच्छी तरह से जानता हूं। किंतु एक बात तुम जानो लंकेश, कि जो राजा समय अनुसार शत्रु से संधि करता है वो लंबे समय तक राज करता है। और यदि तुम स्वयं को राम के समान शक्तिशाली भी समझते हो तो भी इस समय उससे संधि करने में ही तुम्हारी भलाई है।
हमारी भलाई किस में है ये हम जानते हैं नाना। आप व्यर्थ ही यहां आए हैं। आप जिसकी शक्ति से भयभीत हैं वो मेरा दास होगा। हमारे सामने वो सर झुकाएगा और हमारे आदेशों के पालन के लिए विवश होगा।
मैंने तुम्हें परामर्श देकर अपना काम पूरा कर दिया लंकेश, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। मैं चलता हूं।
जाते जाते हमारी बात ध्यान से सुन लीजिए नाना। मैंने राम के विरुद्ध जो भी किया धर्म के अनुसार किया है, चाहे उसकी पत्नी का हरण हो या फिर युद्ध की घोषणा। समुद्र पर सेतु बांधकर उस राम ने जो दुस्साहस दिखाया है, यदि मैं उसका उत्तर नहीं देता तो राक्षसों की ये लंका छिन्न भिन्न हो जाएगी। ये वो सच है नाना जिसे आप नहीं देख पा रहे हैं।
ठीक है लंकेश, ऐसा ही सही, पर मैं तो किसी भी रूप में तुम्हारी जय की ही कामना करूंगा।
तो बस समझ लीजिए, आपकी कामनाओं से मेरी विजय सुनिश्चित है।
लंकेश रावण की जय!
श्री राम की
जय!
श्री राम की
जय!
श्री राम की
जय!
समस्त सैनिकों, सेना नायकों और महारथियों, आप सभी यहीं ठहरे। हम सभी लंका की सीमा पर पहुंच चुके हैं। प्रभु श्री राम की आज्ञा से हम आज सुबेल पर्वत पर विश्राम करेंगे और वहीं आगे की रणनीति तय करेंगे।
प्रभु, मैंने इस सुबेल पर्वत की चोटी पर पत्तों से बना एक आसन बिछा दिया है, आप वहीं विश्राम करें।
किंतु पवन कुमार, ये लंकेश रावण का क्षेत्र है, यहां हम शांति से कैसे विश्राम कर सकते हैं?
हमारे होते आप तनिक भी चिंता न करें प्रभु, आप विश्राम करें, मैं सतर्क रहूंगा।
हाँ प्रभु, पवन पुत्र ठीक कह रहे हैं, आप निश्चिंत रहें। युद्ध की रणनीति पर हम कल सूर्योदय के बाद विचार करेंगे।
ठीक है वानरराज सुग्रीव, हम विश्राम करने जाते हैं। यदि कोई सूचना हो तो हमें शीघ्र बताइएगा।
महाराज विभीषण, आप इतने ध्यान से आकाश में क्या देख रहे हैं?
हे पवन पुत्र, देखिए चंद्रमा कितना सुंदर है, परंतु पता नहीं इस सुंदरता में नीला दाग क्यों है।
इस पर मैंने कभी सोचा ही नहीं था रक्षेंद्र विभीषण, परंतु अवश्य इसमें कोई रहस्य है। किष्किंधापति, क्या आप बता सकते हैं कि चंद्रमा में ये नीला दाग क्या है?
सुग्रीव सहित अनेकों सैनिकों ने चंद्रमा में दाग के अनेकों अर्थ बताए, किंतु किसी का भी उत्तर हनुमान को संतुष्ट नहीं कर पाया। अंततः सभी श्री राम के पास पहुंचे और वही प्रश्न उनसे पूछा, किंतु इस प्रश्न पर श्री राम भी मौन साध गए। सब सोच में पड़ गए कि श्री राम से क्या छिपा है, ऐसी कौन सी बात है जिसे वो नहीं जानते, फिर ये मौन क्यों?
पूरब दिशा बिलों की प्रभु, देखो दित मयंक, कहत सब ही देखो ससे, कहत सब ही देखहु ससी, मृगपति सरीस असंक। रामायण।
मैं काल सेतु पार करने के बाद श्री राम अपनी सेना के साथ सुबेल पर्वत पर पहुंच गए। अब वो लंका की सीमा पर थे, पर ये बात वो स्वयं भी जानते थे कि यदि लंका के दुर्ग को भेदना इतना ही आसान होता तो रावण चुपचाप बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा नहीं करता। पर इस अभेद्य दुर्ग को भेदने का कोई तो रास्ता होगा। यही विचार करते हुए श्री राम कुछ पल के लिए बैठ गए और उनकी आज्ञा से पूरी सेना रात्रि विश्राम की तैयारी में लग गई। रात्रि के पहरे पर सुग्रीव और हनुमान सहित कई योद्धा आपस में बातें कर रहे थे।
इतने सुंदर चंद्र में जो दाग दिखाई दे रहा है वो और कुछ नहीं, राहु की छाया है। राहु चंद्रमा को अपना ग्रास बनाना चाहता है।
नहीं नहीं वानरराज, मेरे हिसाब से चंद्रमा पर समुद्र के जल की छाया पड़ती है।
अब समुद्र के जल का रंग नीला है, इसीलिए चंद्रमा में वही नीलिमा दाग के रूप में दिखाई पड़ती है।
नहीं नहीं नल, चंद्र तो समुद्र से बहुत दूर है, उसकी छाया उस पर कैसे पड़ सकती है? युवराज अंगद, आप बता सकते हैं कि चंद्र में नीले दाग का रहस्य क्या है?
मुझे तो लगता है कि किसी की नजर लगने के डर से चंद्र ने जानबूझकर ऐसा दाग अपने ऊपर लगा लिया है।
ऐसे कैसे हो सकता है, कोई जानबूझकर अपना सुंदर मुख कैसे बिगाड़ सकता है, हा? इस प्रश्न का उत्तर हमें प्रभु श्री राम से ही पूछना चाहिए।
किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे हो पवन कुमार?
आप धन्य हैं प्रभु, हम सब आपके पास ही आने वाले थे।
इतनी रात में ऐसी कौन सी समस्या आ गई?
हमें चंद्र में नीले दाग का रहस्य जानना है प्रभु।
परंतु ये रहस्य तो हम भी नहीं जानते हनुमान, तुम ही बताओ।
प्रभु मैंने तो सोच लिया है, पर मैं आपके मुख से सुनना चाहता था।
पर हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं हनुमान।
प्रभु चंद्रमा आपका भक्त है, आपकी सुंदर श्यामल मूरत उसके हृदय में निवास करती है, वही श्यामल रंग चंद्र में झलक रहा है।
क्या उत्तर दिया है पवन पुत्र ने, विलक्षण! पवन पुत्र हनुमान की
जय!
अंजनी पुत्र हनुमान की
जय!
कहा हनुमंत सुनहु प्रभु, ससि तुम्हार प्रिया दास, तब मूरति बिंधुर बसति सोय श्यामल आभास।
हनुमान का उत्तर सुनकर श्री राम मंद मंद मुस्कुराए। वो जानते थे कि हनुमान उनके परम भक्त थे और वो संसार की हर एक वस्तु में उनकी ही छवि देखते हैं, इसलिए उन्हें चंद्रमा में भी उनकी छवि दिखाई देना स्वाभाविक है। अगले दिन श्री राम ने अपने सारे वानर योद्धाओं को बुलाया और आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करने लगे।
रीच राज जामवंत, आप अनुभवी और नीतिज्ञ हैं, इसलिए आप बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए।
आप तो सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु, मुझ में इतनी बुद्धि कहां कि मैं आपको मार्ग दिखा सकूं।
यह निर्णय की अंतिम घड़ी है जामवंत, ऐसे समय हमें परामर्श देना आपका धर्म है।
मेरा विचार यह है प्रभु कि आप युद्ध के पूर्व एक बार लंकेश रावण को अपना संदेश भेज दें।
किंतु रावण के पास संदेश लेकर जाएगा कौन?
मैं जाऊंगा प्रभु, मेरी गदा कब से रावण पर बरसने के लिए व्याकुल हो रही है।
नहीं पवन कुमार, लंका में पग पग पर तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हें देखते ही वो तुम पर टूट पड़ेंगे।
ये तो शुभ होगा प्रभु, पिछली बार मैंने लंका को जलाकर राख कर दिया था, इस बार रावण की ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई कि वो मरते मरते भी मेरा ही नाम लेगा।
महिदेव दशानंद रावण की, लंकेश रावण की
जय! जयकार करके हमें प्रसन्न करने की चेष्टा मत करो, इस घड़ी मुझे केवल राम की मृत्यु ही प्रसन्न कर सकती है।
आज की सभा इसीलिए बुलाई गई है महाराज लंकेश, कि कैसे हम राम के काल के और पास पहुंच सकते हैं।
हाँ वो तो ठीक है, पर क्या किसी ने सभा बुलाने के पूर्व उस वनवासी राम की युद्ध नीति पर विचार किया है?
वानरों की युद्ध नीति से हम भयभीत नहीं है महाराज,
हनुमान भी एक वानर ही था, पर हमारे योद्धा देखते रह गए और वो लंका दहन करके भाग निकला। किसी ने विचार किया कि ऐसा क्यों हुआ?
अब ऐसा नहीं होगा लंकेश, कभी नहीं होगा। लंका में प्रवेश करते ही उनकी मृत्यु उनका स्वागत करेगी,
राम को बंदी बनाकर हम कारागार में डाल देंगे महाराज।
भ्रमित ना हो महामंत्री, हमने राम को अभी तक एक तुच्छ प्राणी के रूप में देखा है। इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हम बिना युद्ध के उस पर विजय पा लेंगे। तुम्हें लंका की रक्षा की ठोस योजना बनानी होगी। यह निश्चित करना होगा कि कौन सेनापति युद्ध क्षेत्र में कहां होगा।
रावण साक्षात अहंकार का सागर था, पर उसमें यह अहंकार अकारण नहीं था। उसमें शक्ति तो थी ही, वो शत्रु की शक्ति को भी कम नहीं समझता था। वो युद्ध नीति का महान ज्ञाता था, और अब समय आ गया था जब उसके बल और युद्ध नीति की परीक्षा होनी थी। और वो इसी बारे में सोच रहा था जबकि इधर लंका की सीमा के पास पहुंच चुके श्री राम के मन में कोई और ही विचार आया।
ऋषिराज जामवंत, क्या आपको नहीं लगता कि हमें युद्ध की तैयारी से पहले एक बार शांति का प्रयास करना चाहिए?
एक बार समझौते का प्रयास तो अवश्य करना चाहिए प्रभु। युद्ध का परिणाम आपसे छिपा हुआ नहीं है, फिर इतनी भारी हिंसा से बचने का अंतिम उपाय तो करना ही चाहिए। हो सकता है कि रावण मान जाए और देवी सीता को वापस कर दे।
तो ठीक है, इसके लिए हम युवराज अंगद को रावण के पास भेजते हैं।
अहो भाग्य हमारे, आशीर्वाद दे प्रभु। मैं अभी इसी क्षण लंका के लिए प्रस्थान करता हूं।
विजयी हो, हम तुम्हारी यात्रा की मंगल कामना करते हैं युवराज अंगद।
जय श्री राम। भैया, आपने युवराज अंगद को रावण के पास भेज तो दिया, किंतु युवराज कहीं अति उत्साह में रावण से झगड़ पड़े तो क्या होगा?
अंगद वानरराज बाले का पुत्र है लक्ष्मण, वो नीति अनीति और धर्म अधर्म का भेद भली भांति जानता है। वो ऐसी कोई भूल नहीं कर सकता जिसके कारण वो संकट में पड़ जाए।
किंतु मुझे आशंका हो रही है भैया, यदि स्वयं वानरराज हनुमान लंका जाते तो वो गंभीरता से वार्ता करते और आवश्यकता के अनुसार युद्ध भी करते।
तुम नहीं जानते लक्ष्मण कि अंगद के पिता बाली को रावण भली भांति जानता है, वो उसके बल से भी भली भांति परिचित है।
किंतु रावण अंगद का बल तो नहीं जानता भैया।
जो पिता की शक्ति जानता हो वो पुत्र को कैसे नकार सकता है?
तो क्या बाली रावण से अधिक शक्तिशाली था?
बाली ने रावण को बुरी तरह से परास्त किया था लक्ष्मण। अपनी शक्ति सिद्ध करने के लिए वो स्वयं किष्किंधा गया था।
तो क्या बाली सचमुच?
हाँ लक्ष्मण, बाली की प्रसिद्धि की चर्चा रावण ने महर्षि मतंग के आश्रम में सुनी थी।
क्षमा करे महर्षि, लंकापति रावण आपसे मिलना चाहता है।
लंकापति रावण इस क्षेत्र में? परंतु वो तो ऋषियों और महर्षियों का शत्रु है।
नहीं महर्षि, नहीं, ये सच नहीं है।
हमने तो यही सुना है लंकेश।
केवल सुना है, देखा नहीं है महर्षि मतन।
तो क्या यह असत्य है कि लंकेश के अनुचरों ने दंडकारण्य में ऋषियों का जीना दुर्लभ कर रखा है?
हम पाखंड के विरुद्ध हैं महर्षि। जो ऋषि भोली भाली प्रजा को भ्रमित कर धन इकट्ठा करते हैं, हम उन्हें दंडित करते हैं।
तो यहां क्यों आए हो?
हमने सुना है कि बाली नाम के एक वानर को अपनी शक्ति पर बहुत अहंकार हो गया है। उसने हमारे दो अनुचरों का वध कर दिया है। हम उसका बल जानना चाहते हैं।
किंतु इस पंपा क्षेत्र में उसका प्रवेश वर्जित है। मेरे शाप के कारण वो यहां नहीं आ सकता।
तो हम जाएंगे उसके पास। कहां रहता है वो?
ये पर्वत क्षेत्र जहां समाप्त होता है वहीं से किष्किंधा की सीमा आरंभ होती है। बाली उसी किष्किंधा का राजा है। ठीक है, मैं उससे मिलकर आता हूं।
अन्न जल तो ग्रहण करते जाओ लंकेश।
उस दुष्ट बाली को परास्त करने के बाद ही मैं अनुजल ग्रहण करूंगा महर्षि।
श्री राम ने अनुज लक्ष्मण को रावण और बाली के युद्ध की अति रोचक कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि रावण ने बड़ी आक्रामक मुद्रा में किष्किंधा में प्रवेश किया। राजमहल के क्षेत्र में उसे बाली दिखाई पड़ गया और उसने बिना कुछ कहे सुने सीधे बाली को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पर बाद में रावण को पता चला कि वो तो बाली था ही नहीं, वो था बाली का भाई सुग्रीव।
कथा बाली दशकंध की सुनी सभी मन लाए, बानर पूछे हे प्रभु, बानर पूछे हे प्रभु, रावण की गति हुई काय।
रामायण मैं काल हूं। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण अंगद को रामदूत के रूप में रावण से वार्ता करने के लिए भेजे जाने से आशंकित थे। वो जानते थे कि रावण क्रोध में आकर कुछ भी कर सकता है, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं था कि युवराज अंगद ये काम ठीक से कर भी सकेंगे। तब श्री राम ने उनकी आशंका दूर करने के लिए अंगद के पिता बाली द्वारा रावण के परास्त होने की पूरी घटना बताई। रावण परम शक्तिवान था, उसने सुग्रीव को बाली समझकर उठाकर भूमि पर पटक दिया था।
तुम जो भी हो, एक सत्य जान लो, भ्राता बाली संसार के किसी प्राणी से नहीं डरते। इस समय वो समुद्र तट पर पूजन करने गए हैं।
ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः,
ओम युद्धम देहि
नमः,
युद्धम देहि
नमः,
युद्धम देहि
नमः,
युद्धम देहि
नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः।
ये सचमुच पूजा कर रहा है या हमसे भयभीत होकर पूजा का स्वांग कर रहा है?
आप कौन है महाभाग और मुझसे युद्ध क्यों करना चाहते हैं?
मैं सात द्वीपों सहित लंका का स्वामी विश्रवा पुत्र रावण हूं। इस संसार से अत्याचार का अंत करना मेरा धर्म है। तुमने अनीति पूर्वक मेरे दो अनुचरों चेत और प्रचेत को मार डाला है, इसलिए मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा और उससे भी बढ़कर मैं तुम्हारे अजय होने का भ्रम दूर करना चाहता हूं।
तो ठीक है, कैसा युद्ध करना चाहेंगे आप, मल्ल युद्ध या गदा युद्ध?
मैं मल्ल युद्ध करूंगा बाली, मल्ल युद्ध, क्योंकि मल्ल युद्ध ही शक्ति की सही परीक्षा है। तैयार हो जाओ।
मैं तैयार हूं, आओ।
रावण और बाली बहुत देर तक समुद्र की रेत पर मल्लयुद्ध करते रहे। दोनों कुश्ती के दांव पेच में एक दूसरे से बढ़कर थे। बहुत देर बाद
बाली ने महाबली त्रिलोकजय रावण को परास्त कर उसकी छाती पर चरण रखते हुए कहा,
विश्रवा पुत्र रावण, अब बता क्या तुझे सत्य का ज्ञान हुआ? क्या तेरी इच्छा पूरी हुई या और भी कुछ शेष है?
तू महावीर है बाली, आज लंकेश रावण जीवन में पहली बार तेरे जैसे अद्भुत योद्धा से पराजित हुआ है। तेरी गति वायु के समान है और शक्ति पर्वत जैसी। मैं लंकेश तेरा अभिनंदन करता हूं।
ठीक है, मैं तुझे मुक्त करता हूं। अब चलो राजमहल चलो, युद्ध करते हुए तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो।
अवश्य चलूंगा, पर उससे पहले मैं यहीं अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपना मित्र बनाना चाहता हूं। यदि हम दोनों मित्र बन जाएं, तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति हमारे चरणों में होगी।
दशानन, मैं तुम्हें मित्र के रूप में स्वीकार करने से मना नहीं करता, परंतु मेरा इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। यदि जीवन में कभी मेरी आवश्यकता हो तो अवश्य मेरा स्मरण करना।
बाली की बातों से रावण प्रसन्न हुआ और अग्नि को साक्षी मानकर दोनों एक दूसरे के मित्र बने।
परंतु भैया, यदि रावण ने यह कहकर कि आपने उसके मित्र बाली का वध किया है अंगद को भड़का दिया तो?
नहीं लक्ष्मण, युवराज अंगद को भ्रमित करना इतना सहज नहीं है। अंगद अपने पिता का सच जानता है,
किंतु पता नहीं क्यों मुझे आशंका है कि अंगद रावण के माया जाल में ना पड़ जाए।
ये तो अंगद के रावण के पास पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, और हो सकता है कि अब तक तो वो रावण के दरबार में पहुंच भी गया।
लंकेश रावण दुस्साहसी अंगद को देखते ही क्रोध से भर गया। लंका के सभासदों ने भी ये मान लिया था कि लंकेश राम के इस दूत को जीवित नहीं छोड़ेंगे, किंतु राजनीति के अनुसार लंकेश ने अंगद को अपने समीप आने की अनुमति दी और उसने संवाद किया। कैसा अनोखा था लंकेश और युवराज अंगद का संवाद।
मेरे सामने आने का साहस कैसे हुआ?
दूत को अपने धर्म का पालन करने में भला भय कैसा लंकेश?
तुम्हारे जैसे साहसी वीरों का लंकेश सम्मान करता है। कौन हो तुम?
मेरा नाम अंगद है और मैं किष्किंधा के राजा बाली का पुत्र हूँ।
महावीर बाली का पुत्र? आश्चर्य, घोर आश्चर्य।
इतना आश्चर्य ना करें महाराज, अभी मैं जो कहने आया हूं वो ध्यान से सुने।
कहो क्या कहना चाहते हो?
श्री राम की ओर से आपके लिए प्रस्ताव है कि आप देवी सीता को वापस करके अपनी लंका के विध्वंस को बचा लें।
असंभव।
हाँ, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपने इस राजमहल से बाहर निकलें और युद्ध करें।
जाओ उस वनवासी को संदेश दे दो कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं। सीता अब यहां से नहीं जा सकती। तेरे राम ने जो भूल की है उसका यही दंड है।
भूल तो आप कर रहे हैं लंकेश, ये जो आप मान बैठे हैं कि आप माता सीता को नहीं लौटाएंगे।
इतने छोटे मुंह वाले इतनी बड़ी बातें नहीं करते अंगद। तुम भूल रहे हो कि जिस राम के तुम दूत बनकर आए हो वो हमारे मित्र और तुम्हारे पिता बाली का हानता है। बाली का वध किया है उसने।
उस संबंध में आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है लंकेश, मैं अपना हित अहित स्वयं सोच सकता हूं।
तुम्हारी मति मारी गई है, तुम उचित अनुचित का विचार भी नहीं कर सकते।
मेरे विवेक पर उंगली मत उठाइए लंकापति। श्री राम ने जो किया उसका सत्य मैं जानता हूं, और उसका भी सत्य जानता हूं जो मेरे पिता के साथ आपने किया था।
हमने अग्नि को साक्षी मानकर बाली के साथ मित्रता की थी,
हमने किसी भी संकट में एक दूसरे की सहायता का वचन दिया था।
ये आपका स्वार्थ था, मेरे पिता को मित्र बनाकर पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे।
बस करो बाली पुत्र, बस करो। तुम त्रिलोक जयी रावण की सभा में खड़े हो, देवराज इंद्र तक मेरे भय से कांपता है, और तुम्हारी उस राम में इतनी आस्था है जो मेरे साधारण से सैनिक का भी सामना नहीं कर सकता।
किस भ्रम में हैं आप लंकापति? मैं उनका एक तुच्छ सेवक हूं, और मैं आपकी इस भरी सभा को चुनौती देता हूं कि यदि कोई महावीर है तो मुझे पराजित करना तो दूर, केवल भूमि से मेरा एक पैर भर हटा दे।
बालकों के समान चुनौती देकर स्वयं हंसी का पात्र मत बनो बाली पुत्र।
ये तो तभी पता चलेगा जब आपका कोई महायोद्धा मेरा पैर धरती से हटा देगा।
अंगद की ललकार सुनकर रावण के कई वीर योद्धा उठ खड़े हुए थे। सबने अपने बल का जी भर प्रयोग किया, लेकिन अंगद का पैर हटाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला तक नहीं सकता। अपने योद्धाओं का ऐसा अपमान देखकर रावण को घोर आश्चर्य हुआ। वो अंगद की शक्ति का रहस्य जानने के लिए स्वयं सिंहासन से उठा, लेकिन जैसे ही वो अंगद की ओर बढ़ा, अंगद ने अपना पैर पीछे खींच लिया।
नहीं लंकेश, नहीं, यदि आपको पैर ही छूने हैं तो श्री राम के पैर छूइए, वही आपका कल्याण करेंगे। मेरे पैरों पर झुकने से क्या लाभ?
तू अपने राम का संदेश लेकर आया था बाली पुत्र, संदेश देकर तूने अपना कार्य पूरा किया, अब जाकर मेरा संदेश उसे सुना दे कि वो बालकों का खेल बंद करे और युद्ध भूमि में आकर दशानन का सामना करे।
पवन कुमार, पता नहीं युवराज अंगद अभी तक लौटकर क्यों नहीं आए।
मेरी भी यही चिंता है किष्किंधापति, लेकिन मैं जानता हूं कि रावण के सैनिक उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते।
तब तो उन्हें बहुत पहले लौट आना चाहिए था। यदि सब कुछ ठीक है तो इतनी देर होने का क्या कारण है?
प्रभु, प्रभु, प्रभु कहां है प्रभु?
अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ हो गया।
दौड़ो हनुमान, दौड़ो, जल्दी देखो क्या हुआ है।
जी महाराज।
अभी श्री राम के शिविर में अंगद की वापसी के बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी दक्षिण दिशा से उल्काओं जैसे चमकते चार पिंड भारी गर्जना के साथ शिविर में गिरे। सभी वानर और रीछ सैनिक घबरा गए, उन्हें लगा जैसे रावण ने शिविर पर वज्र फेंका है। किंतु श्री राम ये सब देखकर मुस्कुरा दिए।
छत्र मुकुट ततंक तब हटे कही बाण, सबके देखत मही परे, सबके देखत मही परे, मरम न को जान। रामायण।
मैं काल हूं। अभी श्री राम के शिविर में अंगद की वापसी के बारे में विचार विमर्श चल ही रहा था कि तभी दक्षिण दिशा से उल्काओं जैसे चमकते चार पिंड भारी गर्जना के साथ सैनिकों के शिविर में गिरे। कुछ पल के लिए तो वहां भय का वातावरण बन गया। सैनिकों को लगा कि रावण ने उन पर आक्रमण कर दिया है, पर जब श्री राम ने उन चमकते पिंडों को देखा तो उनके मुख पर मुस्कान आ गई, और इससे पहले कि वो कुछ कहते कि तभी लंकेश भ्राता विभीषण ने सारा भेद खोल दिया।
आप सभी भयभीत ना हो, ये ना तो प्रक्षेपास्त्र है और ना ही लंकापति रावण द्वारा फेंके गए वज्र। ये लंकेश के मुकुट के टुकड़े हैं जो यहां गिरकर खंड खंड हो गए हैं।
परंतु रक्षेश, ये इतनी दूर कैसे चले आए?
ये तो अंगद के आने के बाद ही पता चलेगा।
मैं आ रहा हूं प्रभु, मैं आ रहा हूं।
आओ अंगद, आओ, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे।
सब ठीक तो है ना अंगद?
और हमारे शांति प्रस्ताव का क्या हुआ अंगद?
लंकेश किसी प्रकार की संधि नहीं चाहते प्रभु, उन्हें युद्ध चाहिए, केवल युद्ध।
हम जानते थे ऐसा ही होगा। अब ये बताओ कि ये रावण के मुकुट के टुकड़े यहां कैसे आए?
आपकी कृपा से प्रभु।
ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु श्री राम तो यहां है और उन्होंने कुछ किया भी नहीं।
हुआ ये कि जब रावण ने मेरी बात नहीं मानी तो क्रोध में मैंने पूरी शक्ति से भूमि पर अपना पैर पटका। इससे पूरा राजभवन कांप उठा। रावण का मुकुट उसके सिर से उड़ गया और जब उसके सभासद उसे उठाने को दौड़े तब मैंने उसे उठाकर सुबेल पर्वत की ओर फेंक दिया।
धन्य है युवराज अंगद, धन्य है।
पर इस बात से तो रावण के दरबार में खलबली मच गई होगी।
हाँ महाराज, वो तो अभी तक इस घटना से उभरे भी नहीं होंगे।
आज हमें पता चला कि हमारे सैनिक कितने दुर्बल हैं। कोई एक साधारण से वानर का पैर तक नहीं हिला सका। एक और वो वनवासी राम हमारे भय से बार बार शांति प्रस्ताव भेज रहा है और दूसरी ओर हम अपना ही उपहास कर रहे हैं।
महाराज लंकेश, वो अवश्य कोई मायावी वानर था। अवश्य ही उसने अपना पैर किसी माया शक्ति से भूमि पर टिका दिया था।
ये तुम नहीं, तुम्हारा कुचला हुआ पौरुष बोल रहा है। सारा त्रिलोक जानता है कि मायावी शक्तियों के स्वामी राक्षस हैं। उन्हीं मायावी शक्तियों से हमने सीता का हरण किया और लंका तक ले आए
और अब उन्हीं मायावी शक्तियों से हम राम की सेना को परास्त करेंगे।
भ्रम में मत जियो प्रहस्त, तुम्हारे इसी भ्रम ने हमारी लंका राख कर दी है।
चिंता न करें पिताश्री, आपके पुत्र मेघनाथ के होते हुए अब कोई लंका को छू भी नहीं सकता। लंका अपराजेय थी और रहेगी।
हम तुम्हारे मुख से यही सुनना चाहते थे पुत्र। इंद्रजीत मेघनाथ के होते हमें कोई नहीं परास्त कर सकता। हम अपनी बहन शूर्पणखा का प्रतिशोध लेकर रहेंगे।
इस खेल में मेरी विजय होगी शर्मा भाभी।
केवल और केवल शूर्पणखा की विजय। आप तनिक भी चिंता ना करें भाभी, भैया विभीषण एक महाशक्ति के साथ हैं। उस महाशक्ति के साथ जिसे मैंने अपने पति के रूप में वरण किया है।
किंतु तुमने ऐसा क्यों किया शूर्पणखा? लंकेश तो तुम्हें अपने प्राणों से बढ़कर मानते हैं, फिर जानबूझकर उनके विनाश का आयोजन क्यों किया तुमने?
बताऊंगी, अवश्य बताऊंगी, पर क्या उससे पहले आप ये बता सकती हैं भाभी कि भैया विभीषण ने लंकेश का साथ क्यों छोड़ा?
ये तो पूरी लंका जानती है कि मेरे पति विभीषण और लंकेश के विचार एक दूसरे से नहीं मिलते। मेरे पति कभी अनीति का समर्थन नहीं कर सकते, इसीलिए वो श्री राम के साथ हो गए जहां नीति है, धर्म है।
उनके तो केवल विचार ही आहत हुए थे भाभी। मेरी तो दुनिया ही उजाड़ दी लंकेश ने। मैं कैसे भूल सकती हूं कि वो मेरे पति का हत्यारा है। मेरे हृदय में प्रतिशोध की अग्नि उसी समय से जल रही है भाभी। आपको नहीं पता भाभी कि वो केवल मेरा पति ही नहीं, मेरा सब कुछ था, सब कुछ। मुझे अभी भी स्मरण है।
शूर्पणखा, तुम अभी तक इस वीराने में मेरी प्रतीक्षा कर रही थी।
मैं जानती थी कि तुम अवश्य आओगे।
और मैं नहीं आता तो?
मेरा विश्वास मुझे कभी धोखा नहीं देता।
ओह, इतना विश्वास?
ये विश्वास मुझे तुम्हारे प्रेम ने ही दिया है।
आओ चलो कहीं चलते।
पर कहाँ? महल में तो जा नहीं सकते, फिर कहाँ चलेंगे? इतनी रात में मिलने का और कौन सा स्थान हो सकता है?
जब तक तेरा भाई रावण है तब तक तो मैं महल में नहीं जा सकता।
उससे डरते हो?
नहीं, वो बहुत स्वार्थी और ढोंगी है। उसकी दृष्टि मेरे राज्य पे लगी है, और फिर हमारी राक्षसों से शत्रुता भी रही है।
विभीषण की पत्नी शर्मा से अपनी प्रेम कथा कहती शूर्पणखा बहुत भावुक हो गई। अपने प्रेमी का स्मरण करके उसकी आंखें भर आईं। शर्मा को भी लगा कि लंकेश के प्रति शूर्पणखा के हृदय में बदले की भावना अनुचित नहीं है। न जाने कितनी आशाएं थी उसे अपने लंकेश जैसे भाई से, पर लंकेश ने क्या किया?
किंतु मैं अपने भाई को कैसे छोड़ सकती हूँ?
तुम क्यों छोड़ोगी उसे?
लेकिन ये सच है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं तो चाहती हूँ कि तुम डंके की चोट पर लंकेश को बता दो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो।
समय आने पे बता दूंगा।
किंतु हम इस तरह छुप छुप कर कब तक मिलते रहेंगे?
जब तक हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए प्रेम है।
जानते हो, मैंने भाभी मंदोदरी को सब कुछ बता दिया है।
तब तो लंकेश को भी सब कुछ पता चल जाएगा।
रक्षेंद्र, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है।
क्या मेरी भार्य मंदोदरी को मुझसे बातें करने के लिए अनुमति की आवश्यकता है? वैसे किस संबंध में बात करनी?
शूर्पणखा के संबंध में।
कोई चिंता की बात?
चिंता नहीं, पर विचार करने की बात है। मैं उसके भावी जीवन और विवाह के संबंध में कुछ कहना चाहती हूँ।
हाँ, मैं उसके विवाह के विषय में विचार ही कर रहा था, किंतु वो हम तीन भाइयों की अकेली बहन है। उसका विवाह किसी अच्छे राजकुल में होना चाहिए।
लेकिन महाराज, अब आप ये अवसर चूक गए हैं।
क्या? ऐसा क्या हो गया?
वो किसी से प्रेम करती है स्वामी।
प्रेम? कौन है वो?
अश्मपुरी का सरदार विद्युजीव।
वो विद्युजीव?
वो शूर्पणखा से प्रतिदिन मिलता है रक्षेंद्र। दोनों एक दूसरे के लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं।
किंतु शूर्पणखा ने मुझसे अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं?
शायद इसलिए कि कहीं आप उस प्रेम में बाधा ना बन जाए।
यही तो भ्रम है उसका। लंकेश अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है।
तो क्या आप वो जो कर रही है उसका समर्थन करते हैं?
अवश्य। इसमें समर्थन ना करने जैसा क्या है?
किंतु मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। शूर्पणखा अभी उतनी सयानी नहीं हुई है कि प्रेम के उचित और अनुचित को समझ सके। और फिर विद्युजीव चोर की तरह इस लंका में रहता है। क्या आप चाहते हैं कि शूर्पणखा का होने वाला पति एक चोर हो?
मैंने उसे कभी देखा तो नहीं है, पर इतना अवश्य जानता हूं कि अश्मपुरी में उसके बहुत समर्थक हैं। वो एक होनहार युवक है, आखेत उसे बहुत प्रिय है, और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि शूर्पणखा उसे चाहती है।
इसका अर्थ है शूर्पणखा कि लंकेश विद्युजीव के साथ तुम्हारे विवाह के लिए सहमत थे?
हाँ भाभी, वो अपनी राजनीतिक लालसा पूरी करने के लिए मेरा विवाह विद्युषित से करवाना चाहते थे।
इसमें कौन सी राजनीतिक लालसा हो सकती है?
वो चाहते थे कि मेरा विवाह विद्युजीव से करा के वो उसके राज्य को हड़प कर लंका का विस्तार कर सके।
किंतु इसमें बाधा क्या थी?
मेरा पति विद्युजीव बहुत स्वाभिमानी था भाभी। वो पहले ही जानता था कि लंकेश को केवल अपनी सत्ता से मोह है और इसके लिए वो किसी भी सीमा तक जा सकता है। मुझे दुख तो इस बात का है भाभी कि मैं उनकी चाल कभी समझ ही नहीं सकी, वरना मैं उसी समय सावधान हो जाती जब उन्होंने पहली बार मुझे विवाह के संबंध में बात करने के लिए बुलाया था।
भैया, आपने मुझे याद किया।
हाँ बहन, तेरे कल्याण के लिए ही याद किया है।
क्या कोई विशेष बात है?
हाँ, आज मैं तुझसे तेरे प्रेम जीवन की बात करना चाहता हूँ।
हाँ भैया, आपको?
भ्राता रावण के मुख से अचानक प्रेम की बातें सुनकर सूर्पनखा चौंक गई। वो समझ नहीं सकी कि लंकेश उसके प्रेम पर पहरे बिछाना चाहता है या उसे समर्थन देकर उसका विवाह करना चाहता है। वास्तव में सूर्पनखा अपने भ्राता लंकेश के छल से पूरी तरह अनजान थी। रावण ने सूर्पनखा को भरोसा दिलाया और वो आश्वस्त हो गई।
भाई के मन खेल रहे, बड़ी दूर की चाल बींधी प्रेम की सरल बहन, बींधी प्रेम की सरल बहन, समझ न पाई हाल।
पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन।
राम।